Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, ये वर्ल्ड एक ड्रामा है जिसमें हम सभी एक्टर्स हैं। एक का किसी का रोल दूसरे से मिलता नहीं है और यहीं पे आती हैं सारी प्रॉब्लम्स की जड़। यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि एक की पर्सनालिटी दूसरे से कभी नहीं मिलती। तो इस पर्सनालिटी को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी को अपनी ज़िंदगी में आप कैसे मैनेज करें, इसके लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। ओम शांति, वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर साहब, पर्सनालिटी, ये वैसे तो बहुत ज़्यादा इसको आजकल हाइप किया गया है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस होती हैं, कोर्सेस होते हैं, जिसमें हमें अपनी पर्सनालिटी को हम मैनेज कैसे करें ये सिखाया जाता है। पर एक इनर पर्सनालिटी, तो कोर पर्सनालिटी तो कभी बदलती नहीं है, जितना मेरा सोचना है। इसमें आपकी क्या राय है?
ये बात बिल्कुल ठीक है, हमारी एक कोर पर्सनालिटी होती है
जी।
वैसे तो जब बच्चा, छोटा बच्चा होता है
जी,
सभी जानते हैं, अबोध होता है, बहुत सिंपल होता है
जी,
बहुत लवफुल होता है, कोई भेदभाव उसके मन में नहीं होता है
जी।
तो पर्सनालिटी बनती कैसे है? लेट अस, आई थिंक, इसमें इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें, पर्सनालिटी चेंज की बात करें। वैसे पर्सनालिटी को हम हैबिट्स से भी, हैबिट भी कह सकते हैं, संस्कार भी कह सकते हैं। जो आदत पड़ जाती है आपको उसी तरह से करने की। जैसे कोई व्यक्ति बहुत जल्दीबाजी करते हैं, कोई व्यक्ति सस्पिशियस नेचर के होते हैं, कोई व्यक्ति बहुत एंशियस पर्सनैलिटीज होती हैं, है ना, कोई व्यक्ति बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड, जैसे कहते हैं एंग्री पर्सनैलिटी होती है, राइट?
एग्जैक्टली।
कोई व्यक्ति एंटी सोशल टाइप की पर्सनैलिटी बन जाते हैं, साइकोपैथिक पर्सनैलिटी बन जाती हैं, है ना। तो कई बहुत सेंसिटिव पर्सनैलिटी के होते हैं, कई बहुत इमोशनल पर्सनैलिटी के होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज कैसे बनती है, राइट? कुछ थोड़ी थोड़ी बात पर रो पड़ते हैं, है ना, उनको कुछ, कोई कोई ऐसे होते हैं जो बहुत डरते हैं हर बात में, है ना
जी।
तो ये डिफरेंट पर्सनैलिटीज कैसे बनती है, व्हाट इज़ द ओरिजिन? इसके पीछे काफ़ी रिसर्च भी हुई है और काफ़ी इसमें देखा, स्टडी किया है साइकोलॉजिस्ट ने और साइकेट्रिस्ट ने। और बेसिकली ऐसा है कि जो हमारी 11 साल की उम्र है, 11 साल तक की जो उम्र है, उसको हम साइकोलॉजी में ओरल फेज कहते हैं, ओरल फेज इन लाइफ। और पैसिव फेज है जो कुछ हमारे पेरेंट्स में देखते हैं। एक बच्चा 3-4 साल की उम्र से अपने जो पेरेंट्स में देखता है, अपने भाई बहनों में देखता है और अपने आसपास के वातावरण में देखता है,
ओके,
और जिससे वो इम्प्रेस होता है,
ओके,
और वो चीज़ बार बार देखता है और बार बार इम्प्रेस होता है,
तो वो चीज़ उनके संस्कार,
वो उनके अंदर आ जाती है।
ओके, तो ये आप कहना चाह रहे हैं कि जो मेरे आसपास का आबू मंडल है वो मुझ पर इतना ज़्यादा प्रभावित करता है।
यस, ये आप देखिए, जैसे ना, जैसे अभी सपोज एक छोटा बच्चा है, 3 साल का 4 साल का बैठा है, माता जी पिताजी बैठे हैं साथ में, बच्चे भी और भी इसके बड़े भाई बहन बैठे हैं और लोग बैठे हैं। अचानक से मतलब कोई बात, माँ कोई बात कहती है, माँ अपने बच्चे को बोलती तुम ये काम करो, कोई सुनता नहीं, पिताजी गुस्सा करते हैं, सब काम करना शुरू कर देते हैं, काम तुरंत मिनटों में तमाम हो जाता है
जी।
जो आधे घंटे से माताजी बोल रही थी वो काम नहीं हो रहा था, अभी आधे घंटे में काम हो गया। तो बच्चे के अंदर क्या इंप्रेशन आएगा? गुस्सा करने से काम जल्दी हो जाता है, परफेक्शन से हो जाता है। और वही चीज़ फिर बार बार होती है, एक बार नहीं, रेपिटेटिवली होता है वही चीज़ बार बार, रेपिटेटिवली वो दिखता है घर में। जब भी कोई बात होती है, माताजी गुस्सा करती है, काम भाई काम कर देता है, बहन काम कर देती है।
बिल्कुल आपने ठीक कहा डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को थोड़ा सा डांट दो तो फट से वो काम करने लगते हैं, और नहीं तो प्यार से बोलते रहो जैसे वो चीज़ को नज़रअंदाज करने लगते हैं। लेकिन कई बार डॉक्टर साहब ऐसा भी होता है कि अगर मैंने उन्हें प्यार से समझा दिया तो वो ज़्यादा जल्दी समझ लेते हैं और वो शायद हमेशा के लिए वो चीज़ रिपीट नहीं करते। तो ये चीज़, ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। ऐसे सिचुएशन में विच इज़ द बेटर वे, डांट करके या प्यार से?
बेस्ट तरीका प्यार से है।
ओके,
अच्छा, क्या होता है नॉर्मली, क्या होता है कि पेरेंट्स, क्या है पेरेंट्स, है स्कूल में भी, और हमसे जो बड़े होते हैं जब हम छोटे बच्चे थे
जी,
तो वो क्या करते हैं यूजली दे डू नॉट विदाउट एक्सप्लेनिंग विदाउट कन्विंसिंग द चाइल्ड, बिना उनको समझाए प्यार से समझाए, वो चाहते हैं काम बच्चे जैसे हम कहें वैसे कर दें और बच्चा जानना चाहता है क्यों करूं इसमें ऐसे ऐसे नहीं ऐसे क्यों ना करूं राइट तो बेसिकली प्रॉब्लम यहां पर आती है. तो पेरेंट्स चाहते हैं टीचर चाहते हैं जैसे हम कहें ब्लाइंडली इसको फॉलो किया जाए राइट. तो उसमें जब बच्चा बार बार देखता है स्कूल में देखता है घर में देखता है और भी कहीं बाहर देखता है कि गुस्से से काम जल्दी होता है तो उसके मन में एक ये बार बार एक रेपिटेशन मतलब एक पैसिवली रिकॉर्ड होता रहता है जब भी कोई काम नहीं हो रहा है गुस्सा करो. एक रिवार्ड जैसे ना कि गुस्से से एक रिवार्ड मिलता है काम जल्दी हो जाता है तो एक चीज़ रिकॉर्ड हो गई बार बार. जब माताजी या पिताजी या कोई कहते जल्दी करके दिखाओ अभी करना तो फिर काम जल्दी हो जाता है, नहीं बोलो तो नहीं होता. तो हो गया कि जल्दी करने से काम होता है राइट रिकॉर्ड हो जाता है बार बार, एक बार नहीं दसियों बार बीस बार पचास बार सौ बार रिकॉर्ड होता है क्योंकि हम पैसिवली इम्प्रेस होते हैं बच्चे उसमें. जैसे हमारी इंटेलेक्ट काम नहीं करती है, हमारी पावर ऑफ रीजनिंग नहीं होती है बच्चे की पावर ऑफ रीजनिंग नहीं होती. वो जिन बातों में रिवार्ड मिलता है जिन बातों में रिजल्ट होती है उससे इम्प्रेस होता है,
इम्प्रेस हो जाता है.
जैसे मान लीजिए एक और मैं एग्जांपल देता हूँ. मान लीजिए अगर कोई घर में बात हो रही है कुछ काम के लिए बात हो रही है कुछ बात हो रही है पिताजी कुछ बोल रहे हैं गुस्सा कर रहे हैं या कुछ ऐसी बात हो रही है तो माताजी अचानक रोना शुरू कर देती है तो सारा सब लोग ठीक बच्चे भी ठीक उसको मनाने लगते हैं पिताजी भी मनाने लगते हैं और सारा काम जैसे माताजी ने कहा वैसे वैसे हो जाता है.
करेक्ट.
तो बच्चा ही समझता है कि रोने से जब काम किसी तरह से ना हो तो रोने से काम हो जाता है और वो कई जगह देखता है ऐसा तो उसके अंदर वो इम्प्रेशन बन जाता है.
ओके.
इसलिए बच्चे को कहते हैं ना एक कोमल शाखा की तरह है,
बिल्कुल
जिस तरफ मोड़ दो उसी तरफ वो मुड़ जाती है. जैसे पेड़ को भी छोटे पेड़ को जिस तरफ आप मोड़ दें जिस तरफ आप जैसे ना रस्सी से कई बार बांध देते हैं कई बार हम कोई पोल से बांध देते हैं फिर पेड़ सीधा जाता है.
खास करके मनी प्लांट के साथ में ऐसा किया जाता है,
टेढ़ा कर दे तो टेढ़ा जाएगा.
हाँ जी.
तो वही बात है बच्चे, इसलिए बच्चे का जो ये जो 11 साल की तक की उम्र है बहुत ही नाजुक उम्र होती है. इसलिए इसमें पेरेंट्स को स्कूल्स में बहुत प्रॉपर बिहेव होना चाहिए.
करेक्ट.
इसका जो भी सम टोटल, क्योंकि एक बच्चा एक आदमी से खाली पेरेंट्स से इंटरेक्शन नहीं होती, भाई बहनों से भी होती है, स्कूल में टीचर से भी होती है और अपने साथियों से भी होती है. उसके क्लास भी बदलती रहती है, नए स्टूडेंट्स ऐड होते रहते हैं, फिर अपने जो कजिन्स होते हैं नीस होती उनसे भी होती है, मतलब बहुत सारे लोगों से उसकी इंटरेक्शन होती हैं. अच्छा वो टेलीविज़न भी देखता है ना, बहुत सारी चीज़ें आजकल तो इंटरनेट है, बहुत सारी चीज़ देखता है. तो उन सब का सम टोटल जो उसकी उसके अंदर रिकॉर्ड होता है 11 साल तक वो पर्सनैलिटी बन जाती है.
ओके.
किसी को हम कहते हैं टाइप ए पर्सनैलिटी बन गई. अब जैसे वो जब बच्चा बाई नेचर टाइम प्रेशर वर्क प्रेशर में रहेगा परफेक्शन के प्रेशर में रहेगा है ना.
करेक्ट.
कुछ इसमें जीन्स का भी रोल है.
ओके. अच्छा हेरिडिटरी भी होता है.
हेरिडिटरी भी होता है.
ओके.
वो जीन्स उस तरह से पेरेंट्स से मिलते हैं.
ओके.
फिर वो जीन्स अगर माता पिता उस तरह से बिहेव करते हैं, जैसे कहते हैं माता पिता जैसा बिहेव करते हैं बच्चों का बिहेवियर भी वैसा हो जाता है. पर ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी भी नहीं है. कई बार देखा होगा कई पेरेंट्स बहुत एग्रेसिव होते हैं पर बच्चा बहुत साइलेंट होता है. देखा होगा ना कई लोग ऐसे भी होते हैं. वो फिर जीन्स जैसे जैसे बीज है ना अगर बच्चे के अंदर वो वाला एग्रेशन वाला, तो बच्चे को वो जीन वो जो नेगेटिविटी जो पेरेंट्स कर रहे हैं स्कूल में कर रहे हैं उस बीज को पानी मिलेगा.
ओके.
और वो बीज बड़ा होगा. जैसे बताया ना मैंने मन नेगेटिव मन धरती है जिसमें जीन रूपी बीज पनपते बड़े होते.
ओके.
पहले भी एक बार हमने डिस्कस किया था
जी बिल्कुल आपने बताया.
उससे जो है ना वो जीन बड़ा वो सीट बड़ा हुआ पर्सनलिटी डेवलप हो गई. तो 11 साल की उम्र तक जो भी हमारी पर्सनलिटी बन गई, किसी की बहुत टाइप ए बन जाती है मतलब हर चीज़ में परफेक्शन, टाइम का प्रेशर, वर्क का प्रेशर, परफेक्शन का प्रेशर, कंपेरिजन कंपटीशन की नेचर बढ़ जाती है और हर चीज़ में ये इसको बोलते हैं स्ट्रेस प्रोन पर्सनैलिटी, टाइप ए नेचर इसको कॉर्नरी प्रोन भी कहते हैं. हार्ट की बीमारी ज़्यादा होती है ऐसे लोगों को.
अच्छा.
तो ये जो है ऐसे एक टाइप ए की नेचर बन गई. किसी की बहुत सेंसिटिव बन गई, देखा मदर बहुत सेंसिटिव है, थोड़ी थोड़ी बात पे रोना शुरू कर देती है, थोड़ी थोड़ी बात पे फील कर लेती हैं, सोचती रहती हैं, उदास हो जाती हैं, तो सेंसिटिव हो गई. सेंसिटिव पर्सन इमोशनल है, इमोशनल बन गए।
तो ये भी आप कहना चाह रहे हैं कि पेरेंट्स का इतना बड़ा रोल
इतना
होता
बड़ा
है
होता
कि मैं क्या कर रहा हूँ वो सब देख करके मेरा बच्चा भी बड़ा हो रहा है।
यस,
सब कुछ
सस्पिशियस पर्सनैलिटी बन जाती है, जैसे सिनिकल पर्सनैलिटी बन जाते हैं, सिनिकल और हॉस्टाइल पर्सनैलिटी बन जाते हैं
जी,
एज्यूमिंग पर्सनैलिटी बन जाते हैं, अपने आप ही एज्यूम करना, जैसे माँ बहुत जल्दी एज्यूम कर लेती है, फादर बहुत जल्दी एज्यूम कर लेते हैं उसने ऐसा किया होगा, बोलते भी रहते हैं, है ना,
वो चीज़ बच्चे के अंदर आ जाती
है, उसके बच्चे के अंदर आ जाती है।
ओके,
टीचर में भी ऐसे मिल जाते हैं बाई चांस ना, तो फिर वो सारा सम टोटल जो है वो 11 साल की उम्र।
आई कैन सो रिलेट टू दिस, ऐसा कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स के ही प्रतिबिंब होते हैं।
yes.
क्योंकि उनके अंदर में शायद दोनों का कॉम्बिनेशन एक बच्चे के अंदर आता है।
yeah. खाली माँ बाप का नहीं, भाई बहनों का भी,
अच्छा
टीचर का भी। मैंने 11 साल की उम्र तक का ना 5-6 क्लास तो पास कर लेता जब तक बच्चा,
करेक्ट,
तो छठी क्लास तक जो कुछ बच्चे उसको साथी मिले, दोस्त मिले,
जो जैसे
टीचर मिले,
हाँ।
उन सबका समझो एक टोटल कॉम्बिनेशन उस बच्चे को, बाय द टाइम ही इज 11 उसके बाद प्यूबर्टी आने लगती है, प्यूबर्टी में ना वह बच्चा बड़ा होने लगता है, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स उसके अंदर आने लगते हैं, लड़की है तो लड़की में फीमेल करेक्टर्स आने लगते हैं, मेल करेक्टर्स आने लगते हैं, तो 11 साल की उम्र के बाद उसके वो ऑर्गन्स डेवलप होने लगते हैं, तो बच्चा फिर उसके बाद डिफरेंट हो जाता है, वह पैसिव नहीं रहता, एक्टिव हो जाता है, अब समाज में जो कुछ होता है अब वो उसको रीजनिंग करता है, पर उसकी बेसिक पर्सनैलिटी बन गई
जी।
अब वो उसको उसी उसी जैसे चश्मा पहन ले हमारे रंग का, हमको सब हरा दिखाई देता है, लाल रंग का पहने तो लाल दिखाई देता है, अब जो पर्सनैलिटी बन गई अब वो उसी हिसाब से सारी दुनिया को देखने लगता है,
करेक्ट,
पर अब उसको उसी तरह से रीजन आउट करता है, सपोज मुझे परफेक्शन चाहिए, टाइम का प्रेशर, वर्क का प्रेशर चाहिए, परफेक्शन का प्रेशर चाहिए, कंपेरिजन की नेचर बढ़ गई, तो अब मैं उस तरह से ही चलूँगा समाज में,
बिल्कुल,
फिर माँ बाप के अंदर शुरू कर देगा देखना ये सब बातें, माँ बाप को क्वेश्चन करना शुरू कर देगा, आप ठीक से नहीं करते हो, ऐसे नहीं करते हो, टीचर्स को ऐसा बोलना शुरू कर देगा, फ्रेंड्स में बोलना शुरू कर देगा, सेंसिटिव या आपके अंदर आपकी डरपोक पर्सनैलिटी बन के जैसे ना कावर्डिस होगी तो फिर उसकी नेचर ऐसी बन जाएगी।
ओके,
राइट, तो इस तरह से गुस्से की आदत पड़ गई, गुस्सा फिर बार बार करता रहेगा, शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया, तो उस तरह से इंट्रेक्शंस होते जाएंगे, फिर उसके ऊपर हारमोन्स का उस तरह असर पड़ता जाएगा, हारमोन्स का रिलीज भी उस हिसाब से होगा, तो कई लोग देखा होगा कई लोग बहुत ऐसे बन जाते, चेहरा भी उनका ऐसे हार्ड हो जाता है, कई लोग बहुत सॉफ्ट रहते हैं,
करेक्ट,
कई लोग शक्ल से दिखता है वो कुछ सस्पिशियस नेचर के हैं,
हाँ,
नहीं
चेहरे पे ही पता
वो प्यूबर्टी में डेवलप होता है फिर,
ओके, तो वो पर्सनालिटी का पूरे चेहरे पे दिखने लगता है,
हाँ, फिर हमारी बॉडी पूरी बॉडी में दिखाई देने लगता
है, पूरे बॉडी में, ओके,
फिर उसी से हार्मोनल डिसऑर्डर्स होने लगते हैं,
ओके,
जैसे फीमेल्स में अलग टाइप के, मेल में कुछ अलग टाइप के होना शुरू हो जाएंगे,
हाँ जी,
फिर सारी की सारी हमारी जीवन ही वैसा ढल जाती है, हाँ, फिर ये जैसे पर्सनैलिटी जैसे मान लीजिए मेरी टाइप नेचर बन गई, तो टाइप नेचर फिर कैसे परिवर्तन होगी, मतलब समय पर हो सकता है नॉर्मल भी लगे, कि तो जैसी सिचुएशन आएगी जहाँ प्रेशर फील करेंगे वो फिर पर्सनैलिटी सामने एक्सपोज हो जाएगी।
ओके, तो ये पूरा एक साइकिल की तरह है ना,
जैसे सपोज आप घर में हैं, घर में आपको एंग्जाइटी दिखाई नहीं देगी आपके आपके अंदर, तो जब आप ट्रेन को पिकअप कर रहे हैं, ट्रेन पर जा रहे हैं, या ट्रेन पर आज जाना है आपको शाम को, तो सुबह से ही आपके मन में एंजाइटी शुरू हो गई, ट्रेन निकलने जाए, जाना 5 बजे है और सुबह से आपके मन में जल्दी हो जाएगी जाने की, और फिर आप वहाँ भी सोचेंगे मेरी ट्रेन निकलने जाए।
True.
तो ये जैसे एक एंजाइटी वाली पर्सनैलिटी हो जाएगी,
anxious,
क्या होगा कैसे होगा, वरिंग नेचर जैसे कहते हैं,
करेक्ट,
ऐसी नेचर बन जाएगी, तो इस तरह से हमारी डिफरेंट पर्सनैलिटीज बन जाती है।
अब इस वरी से मेरे दिमाग में एक सवाल आया, पेरेंट्स स्पेसिफिकली मम्मीज, जो ममाज है हमारी, वो सबका ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोले या सस्पिशियस बोले बच्चों को लेकर के, कहीं कुछ ये ना हो जाए, कहीं कुछ वो ना हो जाए, कहीं बच्चे के साथ ये ना हो जाए, उस चक्कर में बच्चों को इतना ज़्यादा ओवर पैम्पर करके रख देते हैं कि बच्चे ट्रैप्ड फील करते हैं, कई बार ऐसा होता है ये बच्चों क्लटर्ड फील करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए, पेरेंट्स खास करके मदर को क्या चेंज लाने की ज़रूरत है जिससे बच्चा फ्री भी महसूस करें actually, और सिक्योर्ड भी महसूस करें।
एक्चुअली पेरेंटिंग आजकल पेरेंटिंग में ना पेरेंट्स के लिए क्लासेस कराई जाती हैं।
ओके
हाउ टू बी पेरेंट्स।
ओके
नहीं नहीं हस्बैंड वाइफ होते हैं ना तो उनको पता तो नहीं होता पेरेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है।
exactly.
पेरेंट्स को बच्चों से कैसा बिहेव किया जाता है
जी।
हालांकि ये सब बातें पहले लोग अपने माता पिता से सीखते थे। अपने माता पिता बहुत सॉफ्ट होते थे पेरेंट्स। कभी बच्चों कुछ कहते नहीं थे बिकॉज जॉइंट फैमिली सिस्टम था।
बिल्कुल
प्रेशर था ही नहीं। बच्चे कहाँ बड़े हुए पता ही नहीं लगता था।
बिल्कुल
जब से न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम आया तो दी होल प्रेशर ऑफ डेवलपिंग द चाइल्ड केयरिंग फॉर द चाइल्ड यू नो रियरिंग द चाइल्ड सारा का सारा काम सारी पोषण का काम आगे बढ़ाने का काम उनको संभालने का काम खाना बनाने का काम सारा काम पूरी केयर जो है पेरेंट्स के ऊपर आ गई।
पेरेंट्स के ऊपर
और पेरेंट्स एकदम टोटली नए होते हैं। नहीं माना देव नेवर सीन अपने परिवार में देखा नहीं कि बच्चे कैसे दूसरे बच्चे कैसे बड़े होते हैं कैसे उनको ग्रैंड पेरेंट्स होते नहीं हैं तो उनको एक जैसे बच्चे तो पालने आते ही नहीं है।
करेक्ट
सो इस तरह का पेरेंटिंग पे क्लासेस होती हैं। कैसे बच्चों को आगे बढ़ाया जाए बच्चों कैसे केयर किया जाए
तो
कैसे
उनको नरिशमेंट किया जाए। न्यूक्लियर फैमिलीज तो नहीं
न्यूक्लियर फैमिलीज।
ओके इसीलिए आप ये कहना
चाह रहे हैं देखिए 70s के बाद ही न्यूक्लियर फैमिलीज बननी शुरू हुई।
एग्जैक्टली
70s तक भारत में जॉइंट फैमिली सिस्टम
जॉइंट फैमिलीज
वहां ये प्रॉब्लम्स थे ही नहीं। बहुत सिंपल हम लोग बहुत सिंपल होते थे बहुत सरल होते थे माता पिता कहना मानते थे सिंपल लाइफ थी।
करेक्ट
पर्सनैलिटी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं थी
तो ये मन मत चलाने वाली बात हो गई ना हमने फॉलो नहीं किया हमारे पेरेंट्स को
क्योंकि अब साथ रहते ही नहीं है।
एग्जैक्टली
न्यूक्लियर फैमिली से हो गई।
सो दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज। ओके डॉक्टर साहब टाइप ए पर्सनालिटी ये बहुत सुनने में आ रहा है आजकल सबसे पहले तो इसकी परिभाषा क्या है और किस तरह से हम इससे लड़कर झगड़कर अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं।
टाइप ए पर्सनैलिटी बेसिकली एक तरह की स्ट्रेस प्रोन पर्सनैलिटी है।
ओके
ये लोग जो होते हैं बहुत ही टाइम प्रेशर में रहते हैं वर्क प्रेशर में रहते हैं हमेशा टाइम की जल्दी हर चीज़ की जल्दी में रहते हैं हरी सिकनेस रहती है इनको
जी।
और ऐसे लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं बाई नेचर हर चीज़ में एक्यूरेट होंगे पंक्चुअल होंगे 9 means 9 राइट 9 बजे पहुँचना 9 बजे पहुँच जाएंगे और कोई जिसको 9 बजे बुलाया तो 9 बजे वो पहुँच जाना चाहिए अदरवाइज बहुत इरीटेट हो जाएंगे।
ओके okay, मतलब खुद भी परफेक्ट रहना चाहते हैं और आसपास की चीजों को भी परफेक्ट ही देखना हाँ। चाहते हैं
okay. तो इनको हम जो है बेसिकली को कोरोनरी प्रोन भी कहते हैं कोरोनरी प्रोन पर्सनालिटी।
ओके
ऐसे लोगों को हार्ट की बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं।
ओके
कोरोनरी प्रोन पर्सनालिटी कहते हैं इनको।
ओके
स्ट्रेस प्रोन पर्सनालिटी बहुत जल्दी स्ट्रेस इनको होती है बहुत जल्दी तनाव पैदा होता है टेंशन बहुत जल्दी ऐसे लोगों को हो जाती है और ये संख्या लगभग आज मैं समझता हूँ शायद 70-80% लोग आज समाज में टाइप ए नेचर के लोग
70-80%
ऑलमोस्ट जो डिफरेंट सर्वेज में जो पाया गया है 70-80% लोग आज टाइप ए हैं टाइप ए बिहेवियर है और ये जो लोग होते हैं इनमें सभी तरह की बीमारी ज़्यादा पाई जाती हैं ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ कैंसर्स हार्ट की बीमारी जैसे मैंने आपको बताई
जी
है ना एसिडिटी तो बहुत सारी बीमारियाँ दीज आर द रियल मतलब और दूसरी इसके अपोजिट है टाइप बी पर्सनैलिटी। टाइप बी पर्सनैलिटी हार्डी पर्सनैलिटी है जैसे ये हमेशा जल्दी में रहते हैं हरी सिकनेस में रहते हैं वो स्लो एंड स्टडी होते हैं ये टाइम के बहुत कॉन्शियस होते हैं वो टाइम के कॉन्शियस नहीं मतलब इजी रखते हैं जैसे 9 का 9 कोई बात नहीं 9 से 10 के बीच में आ जाना 10 से 11 के बीच में आ जाना
करेक्ट
वो बोलेंगे एग्जैक्ट 9 शार्प 9 आई वॉन्ट यू एट शार्प 9
शार्प
10 राइट
करेक्ट
ये कहेगा नहीं आई ओके फाइन यू कम बिटवीन 10 to 11
ओके
ये व्यक्ति क्या करता है टाइप ए पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति हर चीज़ खुद करना चाहता है दूसरों पर विश्वास कम होता है
okay.
और टाइप बी पर्सन क्या होता है वो सबको अपना काम डेलीगेट कर देता है आप ये कर लीजिए आप आराम से बाकी रिलैक्स रहता है।
तो ऐसे लोग जो होते हैं वो शायद अच्छे लीडर्स होते हैं क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं काम yes. और जो क्लेरिकल लेवल पे होते हैं वो खुद ही काम कर रहे होते हैं तो yes. शायद वो जो लोग होंगे वो शायद टाइप ए पर्सनालिटी लोग हो सकते हैं
yes.
है ना तो जॉब्स जो कर रहे होते हैं वो शायद जॉब क्लब शायद ज़्यादा ए पर्सनालिटी टाइप ए पर्सनालिटी होंगे ना कि जो जो मैनेजर्स लेवल के ग्रुप yes. लेवल के लोग होते हैं
बेसिकली क्या था पहले कॉर्पोरेट सेक्टर में जब मैनेजर्स को ढूंढते थे हम लोग लीडर्स को ढूंढते थे
हाँ जी
पहले था कि लोग सोचते थे कि वी शुड गो फॉर टाइप ए पीपल जिनकी इनकी आई क्यू हाई हो हर चीज़ में परफेक्शनिस्ट हो
पर वो खुद तो करेंगे नहीं ना सारा काम, आई मीन वो खुद ही करेंगे ना सारा काम, तो वो तो गलत है।
नहीं पर वही वन लास्ट में देखा गया प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती थी बिकॉज दे वर नॉट एबल टू टेक हेल्प फ्रॉम अदर पीपल बिकॉज दे वांटेड टू डू एवरीथिंग ऑन देयर ओन, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन डेलीगेटिंग द वर्क। ये दिन रात काम करेंगे, दीज आर वर्क अल्कोहलिक पीपल, एग्रेसिव पीपल, तो ये लोग दिन रात अपने आप ही लगे रहेंगे किंतु दूसरों से सपोर्ट नहीं ले पाएंगे। इनमें IQ तो है पर EQ नहीं होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस कम होती है।
ओके
बिकॉज़ दे आर नॉट एबल टू टेक यू नो, दूसरों को सहयोग नहीं दे पाते, खुद दूसरों का सहयोग ले नहीं पाते,
खुद ही करेंगे
ओके और हमेशा स्ट्रंग अप होते हैं, हाई स्ट्रंग अप, जल्दी गुस्सा आ जाएगा
ओके,
एंजाइटी बहुत रहेगी
ओके,
नींद नहीं आएगी है ना, इनकी सिकनेस प्रॉब्लम भी ज्यादा होती है, सिकनेस लीव ज्यादा होती है इनकी ना, क्योंकि जल्दी जल्दी फिर क्रैक करते रहते हैं बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर ऑल द टाइम। तो इसकी बजाय टाइप भी अभी क्या है कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या करते हैं, वी आर लुकिंग फॉर पीपल विद IQ तो हो किंतु IQ मॉडरेट चलेगी बट EQ अच्छी होनी चाहिए
ओके,
सो दैट यू आर एबल टू टेक हेल्प फ्रॉम पीपल, यू आर एबल टू डेलीगेट योर वर्क, सो दैट इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी।
बिल्कुल,
तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी चाहे कॉर्पोरेट हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, टाइप बी लोगों की ज़्यादा डिमांड है।
ट्रू,
राइट। तो बेसिकली हमको टाइप ए से टाइप बी बनना है। या मैं एक बता आपको एक साइंटिफिक एंगल से बताना चाहूँगा। कई बार हम लोग कहते हैं जैसे आज का इंसान क्या बोलता है, मैं बहुत बिजी हूँ।
करेक्ट।
कई बार तो लोग बोलते हैं मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं है। आप कहेंगे ना किसी को आज हम ये काम में चले आज वो कर, आप क्या बात करते हैं, मुझे तो मरने की फुर्सत भी नहीं है।
Correct.
मुझे खाना खाने की फुर्सत नहीं है, सांस लेने की फुर्सत नहीं है। इज इट ट्रुथ?
नहीं, ये तो सब करते हैं
लोग, गप्पे किसी से बातें गॉसिपिंग करना शुरू करते हैं, वही व्यक्ति जो बोल रहा है एक घंटा कहीं पे गॉसिपिंग कर लेगा, दो घंटा टीवी के सामने बैठ के वेस्ट कर लेगा, क्या उसको जीने की फुर्सत नहीं है, सांस लेने की फुर्सत नहीं है? तो ये व्यक्ति जो है टाइप ए पर्सन, इसकी मतलब थॉट स्पीड इतनी ज़्यादा होती है। कई लोग कहते हैं बिजी
जी,
बिजी और ईजी क्या फर्क है दोनों में? टाइप बी पर्सन इजी होता है, टाइप ए पर्सन हमेशा बिजी होता है।
ओके,
इस पे स्टडी रिसर्च की गई है।
अच्छा,
दोनों के EEG करके देखा गया। टाइप बी जो लोग, टाइप ए लोग जो होते हैं उनकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी बहुत फास्ट होती है, थॉट फ्रीक्वेंसी बहुत फास्ट होती है, 20-25-30 है ना, क्योंकि उनको एंजाइटी रहती है, इरिटेटेड भी बहुत ज्यादा रहता
है। दैट इज टाइप ए।
टाइप ए
ओके। एंड टाइप बी कैसा होता है?
टाइप बी होता है रिलैक्स, इजी गोइंग, वो टाइम कॉन्शियस नहीं होता इतना, वर्क कॉन्शियस इतना नहीं होता है, वर्क प्रेशर कम फील करता है।
तो क्या टाइप ए पर्सनालिटीज को मेंटल डिजीजेस भी ज्यादा होती हैं?
टाइप ए को ज्यादा होती है,
टाइप ए को ज्यादा होते हैं ना,
टाइप बी रिलैक्स रहता है,
टाइप बी रिलैक्स होते हैं ओके,
राइट। वो अपने वर्क को जैसे ये बहुत टारगेट ओरिएंटेड होते हैं, ये लोग टारगेट ओरिएंटेड होते हैं किंतु स्लो, मतलब स्लोली, स्लो एंड स्टडी होते हैं हर चीज।
ओके,
ये अचीव करते तुरंत, अच्छा 100 मीटर डैशर्स होते हैं ये लोग।
पर आप कह रहे हैं कि हमें टाइप ए पर्सनालिटी ज़्यादा नहीं बनना है, पर वही लोग शायद अचीव भी करते हैं जिंदगी
में। ऐसा नहीं,
ऐसा नहीं है, क्योंकि आप फोकस्ड हाईली है ना उस चीज़ को लेकर के।
नहीं, पर मैं आपको इसी यही यही हम आपको बता रहा हूँ।
हाँ जी,
कि टाइप लोग यूजली जल्दी क्रैक कर जाते हैं।
ओके,
दे आर लाइक 100 मीटर डैशर्स, 100 मीटर जो 100 मिनट की डैश होती है, रन होती है, उसमें एकदम 100 मीटर भाग के क्लैप्स हो जाते हैं, गिर जाते हैं।
ओके,
और जबकि जो टाइप बी लोग होते हैं वो लाइक देयर मैराथन रनर्स, 42 किलोमीटर दौड़ने के बाद भी वो और भी दौड़ सकते हैं।
क्या बात है।
तो जीवन में क्या चाहिए, 42 किलोमीटर चाहिए कि लाइफ इज नॉट 100 मीटर डैश?
ट्रू,
तो 100 मीटर डैश नहीं चाहिए लाइफ में। ऐसे लोग घर वालों के लिए भी टेंशन है, समाज के लिए भी टेंशन है, और टाइप बी लोग सबके लिए सूदिंग है। तो हमें टाइप ए से टाइप बी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने बताया टाइप बी वाले लोग ईजी कैसी होती, स्लो होती है।
करेक्ट,
जैसे वो बीटा के बजाय अल्फा रिदम में रहते हैं।
करेक्ट,
8 थॉट्स ही 1 मिनट में आते हैं।
ओके,
तो उनके बीच में क्या बेसिकली बिजी क्या फीलिंग है, जब आपके थॉट ट्रैफिक टू मच हो जाता है, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, तो थॉट ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ने से आप मन में बिजी महसूस करते हैं।
ओके, तो अगले एपिसोड में हम ये ज़रूर कवर करना चाहेंगे कि टाइप ए से टाइप बी में हम कैसे बने, क्योंकि ये आज अगर आप कह रहे हैं 70-80% लोगों की समस्या है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है जिसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो हम हार्ट डिजीज़ की तरफ प्रोन हो सकते हैं. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो. ओम शांति. दोस्तों, आज हमने क्या जाना, जल्दबाजी करना ये हमारे जीवन के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है. हमने ये भी जाना कि गुस्सा करने से हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं. हमने ये भी जाना कि अगर हमारे ज़िंदगी में थोड़ी सी मिठास आ जाएगी तो आप देखेंगे कि आपके सारे रिश्तों में परिवर्तन आने लगेगा. हमने कई सारे पर्सनालिटीज़ को भी जाना, लेकिन उसमें स्पेसिफिकली हमने टाइप ए पर्सनालिटी को जाना, जो कि ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी में परफेक्शन ये बहुत बड़ा एक ऑब्सेशन बन जाता है. तो लेकिन हमारे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आप उसे बदल भी सकते हैं, और टाइप ए से आप टाइप बी में बन सकते हैं. और टाइप बी बनने के लिए आपको हमारा अगला एपिसोड देखना होगा. तो कल फिर आपसे मिलेंगे आपके ही शो ज़िंदगी बने आसान में. ओम शांति.